जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग।
ओम श्री सतगुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब तक मनुष्य अपने विचार से अपना स्वरूप नहीं पहचानता है तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो उत्तम कुल निष्पाप सात्विक राजसी जीव है उन्हीं को विचार उपजता है और उस विचार से वे अपने आप से आपको पाते हैं। वे दीर्घदर्शी संसार के जो नाना प्रकार के आरंभ करते हैं उनको विचारते हैं और विचार द्वारा आत्मपद पाते हैं और परमानंद सुख में प्राप्त होते हैं। इससे तुम इसी को विचारो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे विचार से असत्य का त्याग करो और सत्य का आश्रय करो। जो पदार्थ आदि में न हो और अंत में भी न रहे उससे मध्य में भी असत्य जानिए। जो आदि अंत एक रस है उसको सत्य जानिए और जो आदि अंत में नाश रूप है उसमें जिसको प्रीति है और उसके राग द्वेष से जो रंचित है वह मूढ़ पशु है, उसको विवेक का रंग नहीं लगता। मन ही उपजता है और मन ही बढ़ता है। सम्यक ज्ञान के उदय हुए मन निर्वाण हो जाता है। मन रूपे संसार है और आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। राम जी ने पूछा, है ब्रह्मन, जो कुछ आप कहते हैं वह मैंने जाना कि यह संसार मन रूप है और जरा मरण आदि विकार का पात्र भी मन ही है। इसके तरने का उपाय निश्चय करके कहो। हम सब रघुवंशों के कुल के अज्ञान रूपितम को हृदय से दूर करने को आप ज्ञान के सूर्य हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम तो जीव को विचार पूर्वक वैराग्य कहा है कि संतों का संग और सच्छास्त्रों से मन को निर्मल करें। जब मन को निर्मल करोगे तब स्वजनता से संपन्न होगा और वैराग्य उपजेगा। जब वैराग्य प्राप्त होगा तब अज्ञानवत गुरु के निकट जावेगा और जब वह उपदेश करेंगे तब ध्यान अर्चना आदि के क्रम से परम पद को प्राप्त होगा।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण सर्ग 22। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, यह जो नाना प्रकार के सुंदर पदार्थ भासते हैं वह सब नाश रूप है, उनकी आस्था मूर्ख करते हैं। यह तो मन की कल्पना से रचे हुए हैं, उनमें से मैं किसकी आस्था करूं? हे मुनीश्वर, अज्ञानी जीव का जीना व्यर्थ है, क्योंकि जीने से उनका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जब कुमार अवस्था होती है तब बुद्धि मूढ़ होती है, उसमें विचार कुछ नहीं होता। जब युवावस्था आती है तब काम क्रोधादि विकार उत्पन्न होते हैं, ये सदा ढापे रहते हैं। जैसे जाल में पक्षी बंद जाता है और आकाश मार्ग को देख नहीं सकता, वैसे ही काम क्रोधादिक से ढका हुआ जीव विचार मार्ग को देख नहीं सकता। जब युवावस्था आती है तब शरीर जर्जरी भूत और महादीन हो जाता है और जीव शरीर को त्याग देता है। जैसे कमल के ऊपर बर्फ पड़ती है तब उसको भंवर त्याग देता है, वैसे ही शरीर रूपी कमल को जरा स्पर्श होता है तब जीव रूपी भंवरा त्याग देता है। हे मुनीश्वर, यह शरीर तब तक सुंदर है जब तक युवावस्था नहीं प्राप्त होती। जैसे चंद्रमा का प्रकाश जब तक राहु दैत्य ने आवरण नहीं किया तब तक रहता है, जब राहु दैत्य आवरण करता है तब प्रकाश नहीं रहता, वैसे ही जरावस्था आने से युवावस्था की सुंदरता जाती रहती है। हे मुनीश्वर, जरा के आने से शरीर कृश हो जाता है, जैसे वर्षा काल में नदी बढ़ जाती है वैसे ही जरावस्था में तृष्णा बढ़ जाती है, और जिस पदार्थ की तृष्णा करता है वह पदार्थ भी दुख रूप है, इसलिए तृष्णा करके आप ही दुख पाता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी समुद्र में चित्त रूपी भेड़ा पड़ा है और राग दूषी रूपी मच्छों से कभी ऊर्ध्व को जाता है और कभी नीचे को जाता है, स्थिर कदाचित नहीं रहता। हे मुनीश्वर, कामरूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी लता और विषय रूपी फूल है, जब जीव रूपी भवरा उसके ऊपर बैठता है तब विषय रूपी बेली से मृतक हो जाता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी एक बड़ी नदी है, उसमें राग द्वेषादिक बड़े बड़े मच्छ रहते हैं, उसी नदी में पड़े हुए जीव दुख पाते हैं। जिस संसार की इच्छा करता है वह नाश रूप है। हे मुनीश्वर, तरंगों के समूह के रण रूपी समुद्र को तर जाने वालों को मैं शूर नहीं मानता, परंतु जो इंद्रिय रूपी समुद्र में मनोवृत्ति रूपी तरंग उठते हैं उस समुद्र के तर जाने वालों को मैं शूर मानता हूं। ऐसी क्रिया अज्ञानी जीव आरंभ करते हैं कि जिसके परिणाम में दुख हो, जिससे परिणाम में सुख है उसको आरंभ वे नहीं करते और काम के अर्थ की धारणा करते हैं। ऐसे आरंभ से शरीर की शांति के पीछे भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। वे कामना करके सदा जलते रहते हैं। जो अनात्म पदार्थ की तृष्णा करते हैं उनको शांति कैसे प्राप्त हो? हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी नदी में बड़ा प्रवाह है, उसके किनारे पर वैराग्य और संतोष दो वृक्ष खड़े हैं। सो तृष्णा नदी के प्रवाह से दोनों का नाश होता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा बड़ी चंचल है, किसी को स्थिर नहीं होने देती। मोह रूपी एक वृक्ष है और उसके चारों ओर स्त्री रूपी बेली है, जो विष से पूर्ण है, उस पर चित्त रूपी भवरा आ बैठता है, तब स्पर्श मात्र से नाश हो जाता है। जैसे मोर का पूंछ हिलता रहता है, वैसे ही अज्ञानी का चित्त चंचल रहता है, इसलिए वह मनुष्य पशु के समान है। जैसे पशु दिन को जंगल में जा आहार करते हैं और चलते फिरते हैं, रात्रि को घर में आए खुटे से बंध जाते हैं, वैसे ही मूर्ख मनुष्य भी दिन को घर छोड़ के व्यवहार में फिरते रहते हैं और रात्रि को आ अपने घर में स्थिर हो जाते हैं। पर इससे परमात्मा की कुछ सिद्धि नहीं होती। वे अपना जीवन वृथा गंवाते हैं। बाल्यावस्था में तो शून्य रहता है और युवावस्था में काम से उन्मत्त होता है। उस काम से चित्त रूपी उन्मत्त हस्ती स्त्री रूपी कंदरा में जा स्थिर होता है, पर वह भी क्षण भंगुर है। फिर वृद्धावस्था आती है, उससे शरीर कृश हो जाता है। जैसे बर्फ से कमल जर्जरी भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही जरा से शरीर जर्जरी भाव को प्राप्त होता है और सब अंग क्षीण हो जाते हैं। पर एक तृष्णा बढ़ जाती है, हे मुनीश्वर, यह जीव मनुष्य रूपी पर्वत पर आ आकाश के फल रूपी जगत के पदार्थों की इच्छा करता है, सो नीचे गिर राग द्वेष कंटक के वृक्ष में जा पड़ेगा। हे मुनीश्वर, जितने जगत के पदार्थ है वह सब आकाश के फूल की नाही नाशवान है। इनमें आस्था करना मूर्खता है। यह तो शब्द मात्र है, इससे अर्थ की कुछ सिद्धि नहीं होती। जो ज्ञानवान पुरुष है उनको विषय भोग की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि आत्मा के प्रकाश से वे इनको मिथ्या जानते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसे ज्ञानवान दुर्विज्ञेय पुरुष हमको तो स्वप्न में भी नहीं भासते। ऐसे विरक्त आत्मा दुर्लभ है कि जिनको भोग की इच्छा नहीं और सर्वदा ब्रह्म की स्थिति में भासते हैं। ऐसे पुरुषों को संसार की कुछ इच्छा नहीं रहती, क्योंकि यह पदार्थ नाश रूप है। हे मुनीश्वर, जैसे पर्वत को जिस ओर से देखिए पत्थरों से, पृथ्वी मृत्तिका से, वृक्ष काष्ठ से और समुद्र जल से पूर्ण दृष्टि आते हैं, वैसे ही शरीर अस्थि मास से पूर्ण भासता है। ये सब पदार्थ पंच तत्व से पूर्ण और नाश रूप है, ऐसा जानकर ज्ञानी किसी की इच्छा नहीं करता। हे मुनीश्वर, यह जगत सब नाश रूप है, देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। मैं उसमें किसका आश्रय करके सुख पाऊं? जब युगों की सहस्त्र चौकड़ी व्यतीत होती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस दिन के क्षय होने से जगत का प्रलय होता है और ब्रह्मा भी काल पाकर नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा भी जितने हो गए हैं उनकी संख्या नहीं हो सकती। असंख्य ब्रह्मा नष्ट हो गए हैं तो हम सरीखों की क्या वार्ता है। हम किसी भोग की वासना नहीं करते, क्योंकि सब चल रूप है, स्थिर रहने के नहीं, सब नाश रूप है। इसलिए इनकी आस्था मूर्ख करते हैं। इनके साथ हमको कुछ प्रयोजन नहीं। जैसे मरुस्थल को देख मृग जलपान करने को दौड़ता है और शांति नहीं पाता, वैसे ही मूर्ख जीव जगत के पदार्थ को सत्य मानकर तृष्णा करता है परंतु शांति नहीं पाता, क्योंकि सब असार रूप है। स्त्री पुत्र और कलत्र जब तक शरीर नष्ट नहीं होता तब तक भासते हैं। जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो जाना न जावेगा कि कहाँ गए और कहाँ से आए थे। जैसे तेल और बत्ती से दीपक बड़ा प्रकाशवान दृष्टि आता है, जब बुझ जाता है तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया। वैसे ही बत्ती रूप बांधव है और उसमें स्नेह रूपी तेल है। उसमें जो शरीर भासता है सो प्रकाश है। जब शरीर रूपी दीपक का प्रकाश बुझ जाता है तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया। हे मुनीश्वर, बंधु का मिलाप ऐसा है जैसे कोई तीर्थ यात्रा का संग चला जाता हो, सो सब एक क्षण की वृक्ष की छाया के नीचे बैठते हैं, फिर न्यारे न्यारे हो जाते हैं। जैसे उस यात्रा में स्नेह करना मूर्खता है, वैसे ही इसमें ही भी स्नेह करना मूर्खता है। हे मुनीश्वर, अहंता ममता की रस्सी के साथ बंधे हुए घटियंत्र की नाई सब जीव भ्रमते फिरते हैं। उनको शांति कदाचित नहीं होती। यह देखने मात्र तो चेतन दृष्टि आता है, परंतु पशु और बंदर इनसे श्रेष्ठ है, जिनकी सम्मति देह और इंद्रियों के साथ बंधी हुई है और आगमा पाई है। उनको आत्मपद की प्राप्ति कठिन है। जैसे पवन से वृक्ष के पात टूट के उड़ जाते हैं, फिर उनको वृक्ष के साथ लगना कठिन है, वैसे ही देहादिक से बंधे हुए है उनको आत्मपद पाना कठिन है। हे मुनीश्वर, जब आत्मपद से विमुख हो जाता है तब जगत को सत्य देखता है, और जब आत्मपद की ओर आता है तब संसार इसको बड़ा विरस लगता है। ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो स्थिर रहे। जो कुछ पदार्थ है सो नाश को प्राप्त होते हैं। इसमें मैं किसकी आस्था करूं और किसका आश्रय करूं? सब तो नाशवान भासते हैं। वह पदार्थ मुझसे कहिए जिसका नाश न हो। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।